नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कुइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, NSS वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नकाशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं। गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डी फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को की गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।